تاریخ 12 اکتوبر اور دن بدھوار. نمسکار بھارت میں, میں ہوں اقبال احمد. ٹرمپ نے کہا ہلری سے زیادہ مشکل تو اپنی ہی پارٹی کے بے وفا نیتاؤں سے لڑنا ہے. ٹرمپ کے خلاف پارٹی مکھیالے کے سامنے ورودھ پردرشن.
ڈونلڈ ٹرمپ از اے سیکشوئل پریڈیٹر اینڈ دی ریپبلکن پارٹی نیڈز ٹو ٹیک ریسپانسیبلٹی فار دی مانسٹر دیٹ دے ہیو کریٹڈ.
تمل ناڈو میں پنیر سلوم کو دیے گئے جلیتا کے سبھی وبھاگ. بھارتی کشمیر میں بگڑتے حالات کے کارن پریٹن سے جڑے بزنس کو بھاری نقصان.
سب سے زیادہ تو اثر ٹورزم پہ ہی پڑا, کیونکہ جس دن سے یہ حالات خراب ہوئے تو ہمارا جو ارائیول وہ پیک کو ہٹ کرنے والا تھا, تو انفارچونیٹلی حالات خراب ہوئے تو جو ہے ان فلو جو ٹورسٹ کا ہے وہ کم ہو گیا اور آج کی ڈیٹ میں بہت ہی کم ہے.
اخباروں کی سمیکشا اور کھیل سماچار بھی, لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں وشو سماچار.
بی بی سی سماچار پربھات پانڈے سے. امریکی راشٹرپتی چناؤ کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے پرتی لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ میں جگہ جگہ ان کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں اور ریپبلکن پارٹی سے مانگ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کی امیدواری واپس لی جائے. مہیلاؤں کے پرتی اشلیل بیان بازی والا ٹرمپ کا ایک پرانا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے. اس بیچ ٹرمپ نے اپنی ہی پارٹی کے ان لوگوں پر حملہ کیا جو ان کا ورودھ کر رہے ہیں. ٹرمپ نے ایسے لوگوں کو وشواس گھاتی قرار دیا. لبنان کے راجنیتک سنگٹھن حزب اللہ نے کہا ہے کہ سیریا میں چل رہے گرہ یدھ کو روکنے کا کوئی راجنیتک حل کارگر ہوتا نہیں دکھ رہا ہے. حزب اللہ اس لڑائی میں سیریا کی اور سے راشٹرپتی اسد کی سیناؤں کے ساتھ لڑ رہا ہے. شیعہ سمودائے کے لوگ اسلامک کیلنڈر کے انوسار محرم مہینے کی 10ویں تاریخ, جسے عشورا بھی کہا جاتا ہے, ماتم مناتے ہیں. اسی دوران حزب اللہ کے نیتا حسن نصر اللہ نے کہا
لا یبدو هناك افق للاسف لحلول سیاسیہ او معالجات سیاسیہ.
موجودہ امریکی راشٹرپتی براک اوباما کی سطح کے چند دن ہی رہ گئے ہیں. ایسے میں ان سے سیریا میں شانتی ستھاپنا کی امید کرنا بیکار ہے, کیونکہ جو کام وہ پچھلے ایک سال میں نہیں کر پائے وہ اب چند دنوں میں کیسے کر لیں گے. مدھیہ پورو کے دیشوں کے بیچ تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے آشنکا ہے کہ آنے والے دنوں میں لڑائی, تناؤ اور خونی سنگھرش دیکھنا پڑے گا. یہ تھے سیریا کے بھوشیہ کے بارے میں آشنکا جتاتے حزب اللہ کے نیتا حسن نصر اللہ. آپ سن رہے ہیں بی بی سی سماچار. افغانستان کی راجدھانی کابل کی پولیس کا کہنا ہے کہ محرم کے دن حملہوروں نے ایک شیعہ دھرم ستھل کارتے سکھی پر حملہ کیا ہے, جس میں کم سے کم 14 لوگ مارے گئے اور 26 گھائل ہو گئے. مرنے والوں میں ایک پولیس ادھیکاری بھی ہے. رپورٹوں کے مطابق دھماکے کے بعد گولی باری کی آواز بھی سنی گئی تھی. جس سمے شہر کے پرمکھ شیعہ دھرم ستھل پر حملہ ہوا, اس سمے وہاں شیعہ سمودائے کے لوگوں کی بھاری بھیڑ تھی. میانمار میں سینا نے کہا ہے کہ دیش میں چل رہے ہنسک ورودھ پردرشنوں میں 4 سینکوں کی موت ہو گئی ہے. یہ گھٹنا دیش کے اتری راجیہ رکائن میں ہوئی. راجیہ سرکاری میڈیا کے مطابق 300 سے بھی زیادہ لوگوں نے پستول, تلوار اور چاقو سے سینکوں پر حملہ کر دیا. اس سے پہلے رویوار کو میانمار کی بنگلہ دیش سے سٹی سیما کے پاس پردرشنکاریوں نے 9 پولیس والوں کی ہتیا کر دی تھی. ان حملوں کے پیچھے روہنگیا مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. روہنگیا مسلمان علاقے میں کئی دشکوں سے رہ رہے ہیں, لیکن میانمار انہیں اپنے دیش کا ناگرک نہیں مانتا. تمل ناڈو کی مکھیہ منتری جے للیتا کی صحت کو لے کر لگائی جا رہی اٹکلوں کے بیچ ان کے سبھی وبھاگ ان کے بے حد قریبی مانے جانے والے او پنیر سیلوم کو سونپ دیے گئے ہیں. بی بی سی سماچار.
ابھیوادن سویکار کیجیے اقبال احمد کا. آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی کا کاریکرم نمسکار بھارت. آج ہے اکتوبر کی 12 تاریخ اور دن بدھوار. کاریکرم کی شروعات امریکہ سے. امریکہ میں راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو پارٹی سے ملنے والا سمرتھن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, جب سے ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ مہیلاؤں کے خلاف ابھدر اور اشلیل باتیں کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے کئی ورشٹھ نیتاؤں نے کھلے عام ان کا ورودھ کرنا شروع کر دیا ہے. اب تک آدھے سے زیادہ ریپبلکن سانسد ان کے ورودھ میں آ گئے ہیں. ٹرمپ نے ان پر حملہ بولتے ہوئے انہیں کمزور اور بے اثر قرار دیا ہے. کل انہوں نے ایک کے بعد ایک لگاتار کئی ٹویٹ کیے اور کہا کہ ان کے لیے ان کی ورودھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہلری کلنٹن کی تلنا میں زیادہ مشکل تو اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں سے لڑنا ہے. सुनिए प्रभात पांडे की रिपोर्ट।
I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people.
महिलाओं के बारे में अपनी कही बातों पर अमरीकी जनता से माफी मांगते डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के साथ राष्ट्रपति पद के लिए हुई दूसरी बहस के दौरान ऐसा कहा। लेकिन दो दिन बाद ट्रंप फिर से अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में वापस आए और अपना विरोध करने वाले रिपब्लिकन नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि अपनी ही पार्टी के ये विश्वासघाती लोग हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चारों तरफ से उन पर हमला कर रहे हैं। इस बीच वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन राष्ट्रीय समिति के दफ्तर के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी के मुताबिक,
डोनाल्ड ट्रंप इज अ सेक्सुअल प्रेडेटर एंड द रिपब्लिकन पार्टी नीड्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मॉन्स्टर दैट दे हैव क्रिएटेड। द रिपब्लिकन पार्टी,
डोनाल्ड ट्रंप एक कुंठित यौन अपराधी की तरह हैं और रिपब्लिकन पार्टी को ट्रंप की जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि उन्होंने ही इस दानव को बनाया है। पार्टी प्रमुख राइंस प्रीबस और स्पीकर पॉल रायन को चाहिए कि वो ट्रंप की उम्मीदवारी वापस ले लें। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आयोजित रैली में हिस्सा लेने वाली एक प्रदर्शनकारी के शब्द। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने पार्टी के अंदर के अपने विरोधियों के बारे में कहा कि उन लोगों को जीतना ही नहीं आता और मैं उन्हें सिखाऊंगा कि लड़ाई कैसे जीती जाती है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वो अब सभी बंधनों से आज़ाद हो गए हैं और खुलकर अमरीका के लिए लड़ पाएंगे। तमाम विरोध के बाद ट्रंप के लिए राहत की बात यह है कि उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस ने फिर से ट्रंप के प्रति समर्थन दोहराया है। आयोवा में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान पेंस ने कहा,
You have nominated a man for president who never quits, who never backs down. He is a fighter, he is a winner, and he's going to fight.
आप लोगों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एक ऐसे आदमी को चुना जो कभी हार नहीं मानता। वो एक चैंपियन है, फाइटर है, और जब हम उन्हें अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर चुनेंगे तो वो एक बार फिर से अमेरिका को महान देश बनाएंगे। ये थे ट्रंप के प्रति अपना समर्थन जताते उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस। 11 साल पुराने इस वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार ट्रंप की लोकप्रियता गिरने की खबरें अमरीकी मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं और मीडिया के एक वर्ग का मानना है कि ट्रंप एक तरह से ये लड़ाई हार चुके हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों ने दूसरी बहस में उनके प्रदर्शन को काफी बेहतर भी बताया। 8 नवंबर को अमरीकी राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा।
ये थे प्रभात पांडे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अमेरिका के बाद अब लौटते हैं भारत और चलते हैं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने एक बयान में जानकारी दी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डॉक्टर जे जयललिता के सभी विभाग वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम देखेंगे, लेकिन जयललिता मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। बीमार जयललिता फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में हैं। पूरे मामले पर सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव के बयान ने बड़े स्पष्ट तरीके से जयललिता की सेहत और राज्य की सत्ता को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उनके बयान के बारे में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भगवान सिंह कहते हैं,
टू थिंग्स हियर दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन इंटरिम चीफ मिनिस्टर नो नथिंग लाइक दैट ओनली हर
राजभवन के बयान में दो पहलू हैं। पहला ये कि राज्य में अंतरिम मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन महत्व उस बात पर है जहां राज्यपाल कहते हैं कि विभागों को पन्नीरसेल्वम को ट्रांसफर करने की सलाह मुख्यमंत्री जयललिता ने दी है। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तमाम बातों के बारे में जागरूक हैं और उनकी सेहत के बारे में बेवजह अफवाहें ना फैलाई जाएं। ये थे भगवान सिंह के शब्द। एक और राजनीतिक विश्लेषक मालन इस घटनाक्रम को अलग नजरे से देखते हैं।
There were lot of speculation and there was in the grapevine that the central government
यहाँ के राजनीतिक हलाकों में ये बातें आ रही हैं कि केंद्र सरकार गवर्नर पर दबाव डाल रही थी कि वे कुछ करें। ये थे मालन के शब्द। मालन ने पहले बीबीसी को बताया था कि 32 साल पहले जब उस वक्त के राज्य के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन अस्पताल में थे तो मुख्य सचिव ने राज्यपाल को कह दिया था कि उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि वे वीआर निरंजन को उनके विभागों को संभालने दें। लेकिन उस समय के राज्यपाल ने मुख्य सचिव के पास लिखित रूप से उनके बयान को लेने के बाद ही निरंजन को विभागों को ट्रांसफर किया था। अन्ना डीएमके के प्रवक्ता सरस्वती ने कहा,
इन एआईडीएमके व्हाटएवर एनी प्रेस रिलीज और एनीथिंग विल बी डन ओनली बाय आवर ऑनरेबल सीएम।
हमारी पार्टी में सिर्फ मुख्यमंत्री ही निर्णय लेते हैं। डॉक्टरों ने उनको कहा है कि वो आराम लें, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने पन्नीर सेल्वम को जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि वो वफादार व्यक्ति हैं। ये थे सरस्वती के शब्द। लेकिन सरस्वती स्पष्ट तौर से नहीं कह पाई कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखित रूप से सलाह दी। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने राज्यपाल के निर्णय का स्वागत किया है। कल अस्पताल से भी कोई बयान नहीं आया, जैसे पिछले थोड़े दिनों से रोज आता रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और तमिलनाडु के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दशहरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में ऐशबाग की रामलीला के बाद हुए रावण दहन के मौके पर उनके भाषण को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। विरोधी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने धार्मिक मंच का उपयोग राजनीति के लिए किया। वहीं बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। सुनिए लखनऊ से समीर आदमन मिश्र की रिपोर्ट।
लखनऊ के ऐशबाग में होने वाली सदियों पुरानी रामलीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खात्मे और उसे बढ़ावा देने वाले को किसी भी कीमत पर न बख्शने की जो बात की, उसकी राजनीतिक हलके में काफी चर्चा है। विरोधी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री की लखनऊ यात्रा और रावण दहन का कार्यक्रम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तय किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था।
उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग चुनाव शुरू हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश को केंद्र बिंदु मान के और अपने बहुसंख्यक समुदाय के वोटर को केंद्र बिंदु मान के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चला करती है, उसी लाइन और उसी एजेंडे पे आज अगर मोदी जी का भाषण आप उठा ले तो पूरी तरह से उनका उनके इंडिकेशन, जिस पर इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी एतराज जता चुकी है कि ठीक है कि हमारी देश की फौजों ने जो एक काम किया है देश की रक्षा के लिए, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा करके उसका बेजा लाभ उठाना, इसके हम खिलाफ हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में ही ऐसे कार्यक्रमों में क्यों शिरकत करते हैं। पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए यहां कभी नहीं आए, जबकि उन्हें हर बार आमंत्रित किया जाता था और वो लखनऊ से ही सांसद भी थे।
रामलीला कोई आज की चीज नहीं है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, वो यही ऐशबाग रामलीला उनसे आग्रह करती थी तो वो उन्होंने हमेशा मना किया। भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रही, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आपको याद होगा एक साल पहले कश्मीर में चुनाव था, वहां चले गए आप दिवाली मनाने सेना के साथ, और लखनऊ की ऐशबाग की रामलीला गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, और उससे बड़ी बात यह है कि नवाब आसफुद्दौला ने ऐशबाग रामलीला के लिए जमीन दी थी। ये एकता प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को कि इस तरह रहिए।
दरअसल मंगलवार को रावण दहन कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उसकी शुरुआत उन्होंने जय श्री राम से की। राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री के इस तरह के संबोधन पर भी आपत्ति है। ऐशबाग की रामलीला सदियों पुरानी है और ये पहला मौका था जब इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए हों। हालांकि आयोजकों का कहना है कि वो हर साल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आमंत्रण भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने को राजनीति से जोड़ने पर विरोधी दलों की खिंचाई की है। पार्टी नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
यह सही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पर क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के कारण गतिविधियां बंद हो जाएंगी? यह तथ्य है ना कि रामलीला में भारत के प्रधानमंत्री जाते रहे, और अगर रामलीला में भारत के प्रधानमंत्री जाते रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला में जाने का फैसला किया, नंबर एक। रामलीला में जाने का फैसला उन्होंने लखनऊ में किया, नंबर दो। ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री सारे त्योहार वहीं मनाते हैं। आपको स्मरण होगा और देश की जनता को भी ये ध्यान है कि जब दिवाली मनाने हुई तो प्रधानमंत्री जम्मू गए, तो राजनीतिक दलों को आलोचना करनी है, इसलिए आलोचना हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनका न पहुंचना भी लोगों में चर्चा का विषय था। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर। भारत प्रशासित कश्मीर के कम के पंपोर में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में छिपे चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ पिछले 48 घंटों से जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी से थोड़ी देर पहले मैंने बात की श्रीनगर स्थित बीबीसी संवाददाता रियाज मसरू से।
जी, अभी भी मुठभेड़ जारी है और कल दिन भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही, बल्कि कल रात 1 बजे तक तो धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। कोई 1 बजे के करीब फायरिंग रुक गई और अभी जो है थोड़ी देर पहले 5:30 बजे फिर से फायरिंग शुरू हो गई। और पुलिस जो है वो बहुत एहतियात कर रही है इस बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही तलख तजुर्बा रहा है फरवरी में इस साल, जब इसी इंस्टीट्यूट की दूसरी बिल्डिंग में चरमपंथी छुपे थे और बहुत बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा था फोर्सेस को, क्योंकि 3 पैरा कमांडोज और 2 अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी जो है वो मारे गए थे, एक नागरिक भी मारा गया था, हालांकि उसमें बाद में 4 चरमपंथी भी मारे गए। लेकिन उस तजुर्बे को नजर में रखते हुए काफी संयम बरता जा रहा है, क्योंकि पुलिस सूत्रों ने हमें बताया कि मिलिटेंट्स जो है वो इस हॉस्टल में, चूंकि हॉस्टल के 60 कमरे हैं, और पुलिस ने बताया कि ये जो मिलिटेंट्स हैं, जब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है परसों सुबह से, मिलिटेंट्स हर 1 घंटे के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और कम्बैट फोर्सेस जो है उनको अंदर आने के लिए जो है वो बाधाएं खड़ी करते हैं हेवी फायरिंग करके। और पुलिस ने ये भी बताया कि ऐसा लगता है कि 2 से 3 मिलिटेंट हैं और वो हेवीली आर्म्ड हैं। और सूत्रों के अनुसार तो 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन पुलिस या सेना ने इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों ने ये बताया कि मिलिटेंट तो मारा गया है, लेकिन उसकी बॉडी को उठाने के लिए अगर फोर्सेस आगे बढ़ते हैं तो वहां से हेवी फायरिंग हो जाती है।
श्रीनगर से ये थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। भारत प्रशासित कश्मीर में 3 महीनों से जारी तनाव में 90 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। वहाँ सामान्य जिंदगी ठहर सी गई है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के पेशे से जुड़े हुए हैं, पर्यटकों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन इस बार तनाव की वजह से पर्यटक आए ही नहीं। होटल, हाउस बोट और शिकारे सभी खाली पड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी सुहैल हलीम भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने भेजी ये रिपोर्ट।
डल लेक के किनारे अपने शोरूम में दानिश एक छोटा सा चरखा कात रहे हैं। ये चरखा चलता है तो कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल बनाने वाले दस्तकारों की जिंदगी चलती है, लेकिन आजकल वादी में आम जिंदगी की तरह ये चरखा भी रुक रुक कर ही चलता है। दानिश कहते हैं कि उनके साथ पहले 150 खानदान काम किया करते थे, लेकिन आजकल तकरीबन सब खाली बैठे हैं।
अभी तो उस तरह काम नहीं होता है, अभी ज्यादा से ज्यादा 5-6 बंदे काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कर्फ्यू की वजह से, वरना यहाँ पे पूरा भीड़ लगती थी। इधर भी बहुत सारे कस्टमर आते थे, इधर भी बहुत सारे बंदे काम करते थे, हमारे सेल्समैन भी बहुत सारे होते थे, और बाजू में भी जो ये यहाँ पे घर आप छोटे छोटे देख रहे हैं, उधर भी हम इनको स्टॉल्स वगैरह देते थे, वो ट्रेसिंग से डिज़ाइन करके फिर वो उस चीज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैंडवर्क शॉल्स के ऊपर, स्टॉल्स के ऊपर, या उनको पश्मीना शॉल्स हम उनसे लेते थे जो वो घर में बनाते, वो भी हम खरीद लेते। आजकल तो वो नहीं रहा।
पास ही ताहिर का शोरूम है, लेकिन उन्हें भारतीय पर्यटकों का ज्यादा इंतजार नहीं। वो अखरोट की लकड़ी पर बारीक काम का सामान बेचते हैं जो इतना महंगा है कि उसे ज्यादातर विदेशी सैलानी ही खरीद पाते हैं। वो कहते हैं कि आजकल वो बस किसी तरह अपना वक्त गुजारते हैं।
पिछले साल अगर आप आज ही के दिन आए होते तो मैं आपको इस टाइम फ्री नहीं मिलता, पहली तो ये बात थी, क्योंकि इतना जो रश रहता था टूरिस्ट का, तो इस टाइम तो टोटली फ्री रहते हैं हम दिन भर, सुबह आना और शाम को जाना। सिर्फ हमको टेंशन रहता है सिर्फ खाने का, चाय कब पियेंगे, खाना कब खाएंगे, और जो प्रे टाइम रहता है नमाज, इसकी रहती है टाइमिंग, सिर्फ इसी का रहता है फिक्र, बाकी कोई फिक्र नहीं रहती है।
जगह जगह बड़े बड़े शोरूम खाली पड़े हैं, मुलाजमीन और मालिक कहीं शतरंज खेलकर तो कहीं टीवी देखकर खुद को मसरूफ करते हैं। डल लेक में मुश्किल से ही कोई शिकारा नजर आता है, और ये शिकारे वाले किस मुश्किल से गुजर रहे हैं ये उम्र से बेहतर कोई नहीं जानता। वो खुद एक शिकारा चलाते हैं।
अभी सब लोग इधर बैठा हुआ है 3 महीनों से, जब से इधर हालात खराब हुए हैं। इधर गवर्नमेंट इस कश्मीर का मसला हल नहीं कर रहा है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि वो कश्मीर का मसला हल करे। लोग इधर आते जाते हैं, हर कोई कमाए, इधर हर कोई घर से बाहर निकलते दिन भर बैठते हैं।
कश्मीर के पर्यटन विभाग के मुताबिक यहाँ आम हालात में हर रोज 10 से 12 हजार पर्यटक आते हैं, लेकिन इनकी संख्या आजकल 500 से 1000 के बीच रह गई है। कश्मीर में पर्यटन विभाग के डायरेक्टर महमूद अहमद,
सबसे ज्यादा तो असर टूरिज्म पे ही पड़ा, क्योंकि जिस दिन से ये हालात खराब हुए तो हमारा जो अराइवल वो पीक को हिट करने वाला था। डेली अराइवल्स हमारे कोई 10,000 से 12,000 के थे और कोई 37 फ्लाइट्स पर डे श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड कर रही थी। उसके अलावा जो है बाय रोड भी लोग आ रहे थे, हमारा जो है अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो रहा था, तो ओवरवेलमिंग अराइवल्स थे। तो इन हालातों में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी विल शैटर ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, तो अनफॉर्चुनेटली हालात ख़राब हुए, तो जो है इनफ्लो जो टूरिस्ट का है वो कम हो गया और आज की डेट में बहुत ही कम है।
शहर के बड़े टैक्सी स्टैंड पर दिन भर टैक्सी ड्राइवर इधर उधर बैठकर टाइम काटते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब उन्हें इस मसले का स्थायी हल चाहिए।
मतलब वन टाइम ये मसला हल होना चाहिए। हर बार आती है टीम, हर बार बात करने के लिए आती है। हम चाहते हैं, हमारे को भी ये कि एक ही टाइम ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि दोबारा हम अब सहन नहीं कर सकेंगे, दोबारा हमारे बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे। उनकी एजुकेशन देखिए, अब हम तो दिन निकालते हैं, हमारे बच्चे जो है वो अभी ट्यूशन के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारा एजुकेशन लॉस है, बहुत लॉस है एजुकेशन में, क्योंकि उनका फ्यूचर हमारा खत्म हो गया।
पर्यटन के पीक सीजन में दिल्ली से श्रीनगर का हवाई टिकट अगर 2,500 रुपए में मिल रहा हो तो ये पर्यटकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, बाकी किसी के लिए नहीं। सुहेल हलीम, BBC श्रीनगर।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और मेरे साथ ही प्रभात पांडे अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताएं प्रभात
जी। इकबाल जी, त्योहारों का एक प्रकार से सीजन चल रहा है और आपको अखबारों में खबर तक पहुंचने के पहले 3-4 पन्ने पलटने पड़ेंगे, क्योंकि सभी ई कॉमर्स कंपनियों के बड़े बड़े 2-2, 3-3 पन्नों के विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें वो सस्ता सामान मुहैया कराने के दावे कर रही हैं। बहरहाल खबरों की ओर चलें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में दशहरा रैली के दौरान जो भाषण दिया गया था उसे लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है, और नरेंद्र मोदी उनमें की तस्वीरें भी छापी हैं जिसमें वो अलग अलग मुद्राओं में, किसी में गदा लिए हुए हैं तो किसी में सुदर्शन चक्र थामे हुए हैं। इस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ में आयोजित रैली को के भाषण को सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों की मदद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को चेतावनी देने वाले लहजे में मोदी ने कहा है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि युद्ध ज़रूरी हो जाता है। द हिंदू ने भी प्रधानमंत्री मोदी के दशहरा रैली के भाषण को पहली खबर बनाया है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर नागपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत के दशहरे के दौरान दिए भाषण को पहली खबर बनाया है और हेडलाइन दी है कि मोदी को शाबाश तो गोरक्षकों को मिला भागवत बल, यानी उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अभी तक तारीफ की है और गोरक्षा और गोरक्षकों का बचाव किया है उन्होंने और कहा है कि ये ज़रूरी है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सुदर्शन चक्र लिए हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ बड़ी ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 बनाना जो सैमसंग कंपनी ने बंद कर दिया उसे प्रमुखता दी है, ऐसा इस मॉडल के फ़ोन के कई बार आग पकड़ने की घटनाओं के सामने आने के बाद दिया है। इसके अलावा एक और अहम खबर ने मेरा ध्यान खींचा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले को सुर्खी बनाया जिसमें कहा है कि कोई भी यौन कर्मी अपने ग्राहक पर पैसे ना देने की स्थिति में बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती, इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसके अलावा द हिंदू ने यह भी खबर छापी है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत का हालचाल लेने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह अस्पताल जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन सभी अखबारों ने इंदौर टेस्ट में भारत ने जो न्यूजीलैंड पर जीत हासिल की और सीरीज 3-0 से जीत ली, क्लीन स्वीप कर ली, उसकी खबर को प्रमुखता दी है जिसमें विराट कोहली जो है वो सीरीज की ट्रॉफी हाथ में लिए हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारी तस्वीरें छापी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तो ये सारी खबरें हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि कल भारतीय फिल्मों के बहुत बड़े स्टार अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था और इन्होंने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बात की और उन्होंने कहा कि देश इस समय तनाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हम सभी को सेना का साथ देने की ज़रूरत है। हालांकि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के सवाल को वो टाल गए।
वो हमेशा इस तरह के
जी वो विवादित
रहते हैं
जी, विवाद जी, मुद्दों पर राय देने से बचते हैं जी।
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की समीक्षा के। और अब बात खेल की। जैसा कि आपने प्रभात से अभी सुना अखबारों की समीक्षा के दौरान कि भारत न्यूजीलैंड से जीत गया है, तो कल इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में 321 रनों से भारत ने शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त की ये रिपोर्ट सुने।
कल भारत ने न्यूजीलैंड को इंदौर में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे ही दिन 321 रनों से करारी मात दी। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 475 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, लेकिन वो लक्ष्य के आसपास फटकना तो दूर महज 44.5 ओवर में ही 153 रनों पर ढेर हो गए। आर अश्विन की ऑफ स्पिन गेंदों का उनके दिलो दिमाग पर ऐसा हवा छाया कि एक के बाद एक सात खिलाड़ी अश्विन का शिकार बने। अश्विन ने 59 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा ने भी 45 रन देकर 2 और उमेश यादव ने 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। आर अश्विन ने पूरे मैच में 13 विकेट अपने नाम किए। इसका इनाम उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मिला। इससे पहले भारत ने चेतेश्वर पुजारा के नाबाद 101 और गौतम गंभीर के 50 रनों की मदद से अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 216 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में रॉस टेलर ने 32, कप्तान केन विलियमसन ने 27 और मार्टिन गप्टिल ने 29 रन बनाए। इस जीत में खुद अपने दोहरे शतक और अश्विन की घातक गेंदबाजी, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की शतकीय पारी को महत्वपूर्ण मानने से इनकार करते हुए कप्तान विराट कोहली ने कामयाबी का श्रेय पूरी टीम को देते हुए कहा,
सबको क्रेडिट जाता है। ऐसे मैं यहाँ बैठ के पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि पूरी टीम का एफर्ट जब तक नहीं होगा तो एक दो लोग मैच नहीं जिता सकते।
विराट कोहली ने पिछले कुछ समय से अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाने की आदत से कैसे छुटकारा पाया, इसका राज भी उन्होंने खोला।
आपको समझना चाहिए कि अगर आप सेट हो जाए तो लंबा खेलें, तो उसके पीछे वही माइंडसेट था। और थैंक मैंने संजय बांगर को किया क्योंकि वो बैटिंग कोच हैं, तो वो हमेशा आपको अश्योरेंस देते रहते हैं कि आप अच्छा खेल रहे हैं, उसी जोन में रहिए, तो आप सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपसे बात कर सके, लोड शेयर कर सके।
विराट कोहली ने इंदौर के विकेट और वहां मौजूद दर्शकों की दिल खोलकर तारीफ की और बताया कि कैसे मैच दर मैच किन खिलाड़ियों की भूमिका इस सीरीज में अहम रही।
रोज 22,000-23,000 लोग आए, गर्मी भी होती है लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी कि मतलब इतने लोग आए। विकेट काफी अच्छी थी, दो दिन काफी अच्छी बैटिंग के लिए, फिर बॉलर्स प्ले में आ गए जो जनरली होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो काफी मजा आया। इस सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो जडेजा की बैटिंग पहले मैच में, साहा की बैटिंग सेकंड मैच में और शामी का स्पेल सेकंड मैच में सेकंड इनिंग में। अगर कोई अच्छा करता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, लेकिन जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन छोटी होती है जरूरी होती है, हम उनको जरूर पॉइंट आउट करते हैं।
अब दोनों टीमें 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी, जिसका पहला मैच रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। और जाते जाते एक बार सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पार्टी के उन लोगों पर हमला किया है जो उनका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसे लोगों को विश्वासघाती करार दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की पुलिस का कहना है कि मुहर्रम के दिन हमलावरों ने एक शिया धर्मस्थल कारतेसकी पर हमला किया है जिनमें कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 26 लोग घायल हो गए हैं। लेबनन के राजनीतिक संगठन हिजबुल्ला ने कहा है कि सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध को रोकने का कोई राजनीतिक हल कारगर होता नहीं दिख रहा है। हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने कहा कि मौजूदा अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सत्ता के चंद दिन ही रह गए हैं, ऐसे में उनसे सीरिया में शांति स्थापना की उम्मीद करना कार है। म्यांमार में सेना ने कहा है कि देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 सैनिकों की मौत हो गई। यह घटना देश के उत्तरी राज्य रकाइन में हुई। पुलिस ने इसके लिए रोहिंग्या मुसलमान समुदाय के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। तो अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।